धवला पुस्तक 15वीं लेक्चर नंबर 11 ओम नमः सित्तेभ्य ओम नमः सित्तेभ्य ओम नमः सित्तेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्जायानं नमो लोए सौवसाऊनं जयलिंदविंदविंदय महिनंदिय भौवपौमवणसंडं अहिनंदनजिननाहं नम्यूमं आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो शेष 18 अनुयोग द्वारों की चर्चा चल रही इस 15वीं पुस्तक में उसमें से अभी अपना 9वां उपक्रम अनुयोग द्वार चल रहा है। हमने निबंधन और प्रक्रम को देखा था। प्रक्रम में बंद के समय प्रदेश आग्रहण परमाणुओं की संख्या की क्या पोजीशन है उसकी बात हमने देखी थी। अब यहाँ उपक्रम में बंद के बाद दूसरे समय से लेकर कर्मों की जो कुछ अवस्थाएं होती उसमें प्रदेशों का जितना संचय है उसकी बात है। दूसरे समय से लेकर जो संचय कहलाएगा वो सत्ता का कहलाएगा। हेलमेन पहले समय में बंद की बात थी तो एक समय प्रबंध की बात थी, दूसरे समय से सत्ता वाला जो संचय उसकी बात होगी। ये महत्व की बात है। अब यहाँ उसने पहले उन्होंने 6 निक्षेप बताए उसमें से यहाँ कर्म उपक्रम की बात चलने वाली है। वो सब निषेकों पे उन्होंने निक्षेपों में बता दिया। फिर बाद में उन्होंने 42 नंबर के पेज पर ये बताया कि उपक्रम जो है कर्म का उपक्रम वो 4 प्रकार का है। एक बंधन उपक्रम, एक उदीर्णा उपक्रम, एक उपशामना उपक्रम और विपरिणाम उपक्रम। तो उन्होंने बंधन उपक्रम भी 4 प्रकार का बताया उसी पेज पर। प्रकृति बंधन उपक्रम, स्थिति बंधन उपक्रम, अनुभाग बंधन उपक्रम और प्रदेश बंधन उपक्रम। यानी जो बंध के क्रम की जो प्ररूपणा करने को प्रकृति बंधन उपक्रम उन्होंने कहा था। यानी जीव के साथ प्रकृतियों का बंध होने को। यानी वो बाद में क्या होता है एक समय से लेकर 70 कोड़ी सागर तक सामान्य से कर्म बताना है प्रकृतियों के भेद किए बिना। तो कर्म एक समय से लेकर जो 70 कोड़ी सागर तक उसके जो कर्म स्वरूप से रहता है उसको स्थिति बंधन उपक्रम कहा था। और फिर उसमें जो अनुविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं उसको अनुभाग बंधन उपक्रम कहा था। फिर प्रदेश बंधन में उस संचय जो है क्षपित कर्मांशिक गुणित कर्मांशिक वगैरह 4 प्रकार बताए थे उसको यहाँ प्रदेश बंधन उपक्रम कहा था। उसके बाद उदीर्णा क्या अपना प्रकरण शुरू हुआ है पेज नंबर 43 से मिला नीचे का बीच में पैराग्राफ है ना। उदीर्णा 4 प्रकार के, प्रकृति उदीर्णा, स्थिति उदीर्णा, अनुभाग उदीर्णा और प्रदेश उदीर्णा। अब उदीर्णा कहना किसको, तो नहीं पके हुए कर्मों के पकाने का नाम उदीर्णा। पकाने का अर्थ होता है उदय में लाना, क्योंकि पकना कहेंगे कब, जब फल मिलता है तब उसको कहेंगे पका। तो फल कब मिलेगा, उदय में आने पर। तो यहाँ कहते कि और ये कौन सी, उदय तो रेगुलर चल रहा है परंतु जो ऊपर जिसके उदय नहीं था अभी वो जल्दी में उदय में आवे उसको कहेंगे उदीर्णा। ख्याल में आई। अब उसमें भी हमने देखा था कि एक एक प्रकृति की उदीर्णा अलग बात है और प्रकृति स्थान उदीर्णा यानी 8 प्रकृतियों की उदीर्णा होती है, 7 की 6 की 5 की, इस तरह से हमने देखे थे वो उसके स्थान बताए थे। 44 पेज पर हमने देखा था कि कौन सी उदीर्णा कहाँ विच्छिन्न हो जाती है उसकी बात हमने देखी थी। हमने ये बात देखी थी कि आयु की उदीर्ण तो पहले मैं भव के पहले समय से लेकर मरण के एक आवली पूर्व तक चलता है, यानी आवली प्लस एक समय बाकी है मरण के पूर्व, तब तक उसकी उदीर्णा होगी। अंतिम आवली में उदीर्णा नहीं होगी, क्योंकि उदीर्णा उसी को कहते हैं, आवली के ऊपर के निषेकों में से कुछ परमाणु नीचे आते हैं उसको उदीर्णा कहते हैं, वो तब नहीं होगी। दूसरी बात, छठे गुण स्थान में आयु की और वेदनी की उदीर्णा की विच्छित्ति होती है, उसके ऊपर उसकी उदीर्णा नहीं होती, ये बात हमने देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय की उदीर्णा कहाँ तक होती है, हाँ बारहवें के एक आवली पूर्व तक, हाँ यानी एक आवली और एक समय उसमें अंतिम, और मोहनी की दसवें के अंत तक होती, ये बात अपनी हो गई थी। नाम और गोत्र की हमने देखे थे कि सेव केवल के अंतिम समय तक, उसमें आवली कम नहीं करना, तेरहवें के अंतिम समय तक होती, इस तरह से हमने उसकी बात देखी थी। उसके बाद उसका काल हमने देखा, यानी उदीर्णा होने का काल एक जीव की अपेक्षा और अनेक जीवों की अपेक्षा, लगातार उदीर्णा कितने काल तक होगी इसकी बात हमने देखी थी और उसकी चर्चा भी की थी अपनी। फिर हमने 46 पेज पर वो काल के बाद उसका अंतर भी देखा था कि कितने काल तक एक जीव की अपेक्षा उसमें कितना अंतर पड़ सकता है और अनेक जीवों की अपेक्षा कैसे उसके भंग पड़ते, उसकी भी बात हमने देखी थी। उसके बाद अपनी 48 पेज पर प्रकृति स्थानों की, वहां पहले में पहले समुत्कीर्तना स्थान, समुत्कीर्तन है वो कौन से स्थान है वो बता देना, उसको कहेंगे वो स्थान, यहाँ लिखा नहीं, प्रकृति स्थानों का समुत्कीर्तन, समुत्कीर्तन कहना है कह देना, क्या क्या है, आठ कर्मों की उदीर्णा होती है, सात की होती है, छह की होती है, वो बता दिया, वही उसके प्रकृति स्थान समुत्कीर्तन। फिर उसमें उसका स्वामित्व कौन है, आठ कर्मों का उदीरक कौन है, तो आयु सहित सबकी उदीर्णा चल रही है, सात कब हो गए, जो नीचे के गुण स्थानों में जब मरण के लिए आवली बाकी है तभी, इस तरह से हमने देखा था वो उसका स्वामी। सात का कब होगा, सात का तो हमने देखा था ना, एक से छह तक और मरण के पहले, छह का कब होगा, आयु और वेदनी दोनों की उदीर्णा रुकती तब, इस तरह से हमने सब बातें देखी, उसके स्वामित्व देखे थे। उसके बाद 49 पेज पर, यानी अभी पहले तो हमने देखे थे एक एक प्रकृति की बात देखी थी और यहाँ स्थानों की बात है, तो उसमें स्थानों की अपेक्षा से काल बता रहे, यानी आठ प्रकृतियों का उदीर्णा हर समय चल रही किसी एक जीव की, तो लगातार कितने काल तक चलेगी, मिनिमम और मैक्सिमम ये पूछ रहे हैं, तभी उसकी बात हम फिर वहां से पहले लाइन से पढ़ेंगे डिटेल में। 49 पेज, वैसे हम बीच तक आए थे आधे पैराग्राफ तक, दोबारा पढ़ेंगे। आठ कर्मों का उदीरक, जघन्य से एक व दो समय, एक या दो समय, देखो भव के पहले समय से तो आठों कर्मों की उदीर्णा चल रही है, एक दो समय तो कैसे हो सकते हैं, तो हमें ऐसा सोचना है कि जब आयु और वेदनी की उदीर्णा नहीं हो रही थी, कब, सातवें गुण स्थान में, जब वही जीव फिर छठे में आएगा रेगुलर, तो क्या होगा, दोनों की उदीर्णा चालू हो जाएगी, तो छह के बदले वहां आठ की उदीर्णा चालू हो जाएगी, पर जीव ऐसा लेना है कि एक ही समय तक आठ की उदीर्णा होवे, यानी अभी हमको ऐसी सोचना है कि वहां वेदनी की तो उदीर्णा तो होगी होगी छठे गुण स्थान में, आयु की होगी कि नहीं होगी, तो अगर मरण नजदीक नहीं आया होगा तो उसकी भी होती रहेगी, तो आठ की होगी, तो उसने छठे में आते ही आठ की उदीर्णा की, अभी उसका मरण का कितना, एक समय और आवली उसकी बाकी थी मरण के लिए, इसलिए वो आवली में प्रविष्ट होते ही उसकी उदीर्णा आयु की रुक गई, वेदनी की तो चलेगी, तो वो पहले आठ का था फिर सात का हो गया, यानी वो आठ का उसका एक समय तक होगा, मतलब किसी आचार्य के उपदेश के अनुसार ये दो समय होना चाहिए, यानी उसमें दो पॉसिबिलिटी बताई, एक या दो समय, ये जघन्य से अंतर किसका, आठ की उदीर्ण आयु का नहीं, आठ की आठों कर्मों की उदीर्ण होने का जघन्य काल एक जु की अपेक्षा। यहां तक समझ में आई? देखो आठ कर्मों का उदीरक जघन्य से एक व दो समय तथा उत्कर्ष से, अभी कोई जीव लगातार आठ कर्मों की उदीर्ण करेगा तो ऐसा कौन सा जीव है? तो मैक्सिमम आयु वाला, उस मैक्सिमम आयु में से आवली कम कर दो तो कितनी होगी? एक आवली कम 33 सागर, 33 सागर में से एक आवली कम, तो आवली कम 33 सागरों को हम काल तक होते। ये समझ में ना, हमको समझ कर पढ़ना है, केवल पढ़ नहीं जाना है। देखो केवल पढ़ते हैं या याद करते हैं तो उससे कुछ यानी वो भाव भाषण नहीं होता है, ये हमें स्वयं को वो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए अपने माइंड में। सात कर्मों का उदीरक जघन्य से एक व दो समय होता है, यानी वो सात का ही उदीर्णा करे और फिर वो तो सात में से छह वाला हो जावे, यानी वो प्रमत्त में अभी आयु उसकी थोड़ी बाकी थी, यानी वो तो प्रमत्त में था और प्रमत्त में जाकर मरने वाला है, तो उसका आवली काल प्रमत्त में ही चालू हो गया, तो वह एक या दो समय तक उसने सात की उदीर्णा की और बाद में तो छह की हो गई, उसकी वजह से भी छह की होने वाली थी। तो देखो सात कर्मों का उदीरक जघन्य से एक व दो समय होता है, क्योंकि मनीषा बहन ख्याल में आती बात, प्रमत्त गुणस्थानवर्ती जीव के आयु कर्म के उदयावली में प्रविष्ट होने पर जब वह द्वितीय समय में अथवा तृतीय समय में अप्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त होता है, तब चूंकि वेदनीय की उदीर्णा नष्ट हो जाती है अतः उसके, यानी वहां तो वेदनीय की उदीर्णा हो रही थी छठे में, परंतु आयु अभी उदयावली में प्रविष्ट हो गई थी उसकी, तो एक या दो समय उसने छठे में बिताए, बाकी जो आवली का काल है वो सातवें में बिताएगा, तो वहां उसकी छह की उदीर्णा चालू हो गई, वैसे भी वेदनी की रुक गई तो सात में से छह का हो गया वो, तो सात में वो एक या दो समय तक रहा, तो उसके एक या दो समय प्रमाण सात की उदीर्णा का काल पाया जाता है। ब्रैकेट में लिखा है तात्पर्य यह है कि जिस प्रमत्त संयत के आयु कर्म उदयावली में प्रविष्ट हो गया उसके सात कर्म की उदीर्णा होती है, किंतु उसके एक समय बाद या दो समय बाद अप्रमत्त संयत गुणस्थान को प्राप्त हो जाने पर, यानी उसकी तो उसमें ये तो उसमें दो राय है इसलिए एक या दो समय कहते हैं, प्रमत्त संयत के सात कर्म की उदीर्णा का जघन्य काल एक या दो समय देखा जाता है। हमने देखा है दोनों पद्धति से बताया, आठ कर्मों का उदीरक भी एक या दो समय बताया, सात का भी एक या दो समय जघन्य काल, अब इसका उत्कृष्ट काल बताएंगे। सात की उदीर्णा का काल उत्कर्ष से आवली प्रमाण है। हमने देखा मरण के पहले आठ की उदीर्णा होती थी तो आयु की रुक गई तो सात की होने लगी, तो वहां तो हमने आठ की उत्कृष्ट काल, उसका आठ का उत्कृष्ट काल तो आवली कम 33 सागर देखा, और सात कर्मों का उत्कृष्ट जो है वो आवली प्रमाण ही होगा। ख्याल में आई बात? अभी छह का उदीरक, अब छह का उदीरक कब शुरू होता है? सातवें से। कब तक होगा? जब तक वो पांच का उदीरक नहीं होगा तब। तो पांच का उदीरक कब से शुरू होता है? दसवें के अंत में चालू हो जाता है, आवली बाकी है तब पांच का शुरू हो जाता है उसको। देखो छह का उदीरक जघन्य से एक व दो समय उनकी उदीर्णा करता है और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त काल तक उदीर्णा करता रहता है। अभी छह का उदीरक कैसा है? अप्रमत्त में आए है और एक या दो समय बिताए छह के साथ, तो क्या हुआ? मरण हुआ। मरण हुआ तो क्या होगा? देव में ही जाएंगे। देव में जाएंगे तो कितनी उदीर्णा होगी? आठ की उदीर्णा चालू होगी, तो छह का उदीर्णा का काल है क्या? दो समय। ख्याल में आनी भाई, ये कैसे हमको सोचना है? देखो छह का उदीरक जघन्य से एक व दो समय उनकी उदीर्णा करता है, उत्कर्ष से अंतर्मूर्त काल तक उदीर्णा करता है। अंतर्मुहूर्त कैसे लेना, 7, 8, 9 और 10वें के अंतिम आवली छोड़कर, क्योंकि वहां मोहिनी की उदीरना रुक जाएगी। तो 5 का उदीरक जघन्य से 1 व 2 समय उनकी उदीरना करता है, ऐसे समझना। 5 का उदीरक कब है, 10वें की अंतिम आवली में प्रविष्ट हो गया तब, और वहां एक समय में मर जाएगा। तो 5 का कर रहा था वो, वहां जाके 8 का करने लगेगा। उत्कर्ष से अंतर्मुत काल तक उनकी उदीरना करता है, यानी 10वें में आवली बाकी है तब 5 की उदीरना कर रहा था, 11वें में भी 5 की कर रहा है, लौट के आएगा 10वें के पहले समय में। नहीं, 5 के बाद 2 की कर रहा था, 2 की कर रहा था, 2 की तो सहयोगी में करेगा, नहीं यहाँ तो 5 की ही कर रहा था थ्रू आउट। केवल वो 12वें के अंत में जाने वाला ही 2 की करेगा वहां से, तो ये 5 की कर रहा था, 10वें में भी 11वें में भी, और इतनी उसने 5 की और फिर नीचे आ गया 10वें के अंदर, तो उसने 6 की उदीरना चालू कर दिया। उतरते समय आवली की क्या जरूरत है, ख्याल में ना, उतरते समय तत्काल उसकी शुरू हो जाएगी। देखो 6 का ये हो गया, 5 का उदीरक, 5 का उदीरक जघन्य से 1 व 2 समय उनकी उदीरणा करता है, उत्कर्ष से अंतर्मुत काल तक उनकी उदीरणा करता रहता है, यानी बाद में वो जब नीचे आ जाएगा 10वें में तो मोहिनी की भी उदीरणा चालू हो जाएगी। देखो चढ़ने वाला मोहिनी का उपशम करते चढ़ा था, आवली काल में उसकी उदीरणा भी रुक गई है, क्योंकि उदय अभी एक आवली इतना बाकी था, बाद में तो 11वें में जाने वाला है, ख्याल में आती कुछ बात। फिर लौट के, क्योंकि मोहिनी की उदीरणा रुक गई थी, पहले 6 की होती थी, कहां से, 7वें के पहले समय से 6 की उदीरणा हो रही थी, 10वें के एक आवली पूर्व तक उसकी 6 की उदीरणा चल रही थी, अब 10वें के अंतिम आवली में प्रवेश किया तो 5 की उदीरणा हो रही, 11वें में भी 5 की उदीरणा होगी, फिर 10वें में लौट कर आते ही उसकी 6 की उदीरणा चालू हो जाएगी। क्यों उदीरणा चालू हो गया बोलो, उसके बिना सूक्ष्म लोभ का उदय कैसे आएगा, ख्याल में, उदय रूप हो जाएगा ना, उपशमित था उसका उदय शुरू हो जाएगा, तो उदीरणा से तो उदय हो जाएगा वहां पर, समझ में आई बात। तो 10वें में प्रविष्ट करते ही 6 की उदीरणा शुरू होगी, तो उसका अंतर्मुहूर्त कैसे, 10वें की आवली और 11वां गुणस्थान, ये उसका अंतर्मुहूर्त का प्रमाण है। ये 5 का जो अंतर्मुहूर्त बताए ना, अंतर्मुहूर्त उत्कर्ष से, यानी 10वें की एक आवली प्लस 11वां गुणस्थान। अब 2 का उदीरक, 2 का उदीरक कब शुरू हुआ, 12वें के आवली में शुरू हुआ, अंतिम आवली में, और पूरा 13वें का काल, 13वें के अंतिम समय तक चलेगी। अब मुझे बताना, प्रेरणा बिना आप बताना, उसका मिनिमम और मैक्सिमम काल कितना होगा, मिनिमम अंतर्मुहूर्त, क्योंकि 12वें की आवली और 13वें का मिनिमम अंतर्मुहूर्त और मैक्सिमम कुछ कम पूर्व कोटि। हाँ, देखो हमने पढ़ने के पहले हम जरा देख लेते, 2 का उदीरक जघन्य से अंतर्मुहूर्त, ये जघन्य से अंतर्मुहूर्त ने 12वें की आवली और 13वें का पूरा काल, तेरवा गुणस्थान, और उत्कर्ष से कुछ कम पूर्व कोटि काल तक उनकी उदीरणा करता है, क्योंकि 13वें का उत्कृष्ट काल जो 8वें साल के बाद संयम धारण करके श्रेणी चढ़ के 13वें गुणस्थान में जाता है, कुछ कम पूर्व कोटि तक 13वें में रहेगा। इस प्रकार काल समाप्त हुआ, इस काल समझ में आई बात, ये प्रकृति स्थानों की बात चल रही, जब स्थान कहने से 8 का उदीरक के 7 का, 6 के, 5 का, के 2 का, इस तरह से देखना है, 6 का, 5 का, 2 नाम और गोत्र का चल रहा, उदीरणा चल रही है, विच्छित्ति की बात नहीं है, अभी 13वें में केवल नाम और गोत्र की ही उदीरणा हो रही है, क्योंकि 13वें के तो घाती कर्म कोई है ही नहीं है, आयु और वेदनी की तो ऑलरेडी रुक गई है, तो अभी नाम और गोत्र दो ही बच्चे हैं। अब अंतरकाल बताएंगे, एक जीव की अपेक्षा आठ कर्मों की उदीर्णा का अंतरकाल। देखो जब आठ कर्मों की उदीर्णा हो रही कब, तो पहले समय से भोग के मरण के एक अवली पूर्व तक, तो उसका अंतर कब होगा, आठ का अंतर। देखो एक दो अपेक्षा से बात करना है, एक तो आठ का हो रहा था मरण के पहले सात हो जाएगा, फिर दूसरे भव में जाएगा, पर वो आवली काल बड़ा है, हमें उससे छोटा काल चाहिए अंतर में। तो कैसे होगा, छठे तक वो आठ का कर रहा था और सातवें में गया, सातवें में कितने का करेगा, छह का, और वहां जाके मरण हो गया।
यहाँ पे एक समय होगा, यहाँ पे नहीं बताया है, पर एक समय ले सकते हैं
ना, एक जीव की अपेक्षा दिन का अंतर काल,
क्योंकि
छठवें स्थान में आया और अवली काल बाकी था और उसने उदीर्णा एक समय के लिए बंद की और एक
नहीं,
समय
नहीं, नहीं, कैसे कैसे
छठे में आया और छठे का अवली काल बाकी है।
हाँ, यानी उसके अवली में प्रविष्ट हो गया।
हाँ, हाँ। अब एक समय के लिए बंद हो गई उदीर्णा और नेक्स्ट समय में मरण हो गया, तो उसकी उदीर्णा चालू।
नेक्स्ट समय में कैसे मरण होगा,
अवली का
अवली में कब प्रविष्ट हुआ।
अच्छा,
और बाद में उसको इमीडिएट आठ का करना है।
छठे में उदीर्णा रुक गई,
छठे में कब रुक गई,
एक अवली काल बाकी था तभी आठ की हो रही थी,
आठ की हो रही थी, बराबर
बराबर। पीछे एक समय पश्चात उसका मरण हो गया तो वापस आठ का उदीर्णा हो जाएगा।
एक समय पश्चात कैसे मरण हो जाएगा, मरण अभी एक समय अवली बाकी है मरण के, फिर बाकी तब मरण कैसे कराते हो।
उसका मरण का काल अवली के पश्चात एक समय के बाद का है,
अवली और
एक अवली अच्छा आयु की रुक जाएगी।
ख्याल में कोई कंफ्यूजन
नहीं,
देखो देखो उनका कहना है कि सातवें में जाके एक समय में मरने वाला है समझो, पर सातवें में एक समय मरेगा, पर छठे में वो आवली के पहले उसको प्रविष्ट होगा ना, तो आयु की उदीर्णा पहले रुक जाएगी, सात में से छह में आ ही जाएगा वो।
नहीं, था कि छठे में अवली काल बाकी रहा और उसकी उदीर्णा रुक गई।
हाँ, नहीं, छठे में वो सात का हो गया।
हाँ
हाँ, तो आठ का कब होगा,
छठे में दोनों की रुक गई ना, आठों की, आठ में
कहाँ रुक गई,
सातावेदी और आयु की दोनों की एक,
वो तो छठे के बाद वो अवली पहले नहीं रुकती, क्यों रुकेगी वेदिनी की अवली पहले क्यों रुकेगी।
नहीं तो आठ का उदीरक था और आयु का, अच्छा आयु का अंतर्मूर्त बाकी था,
अंतर्मूर्त नहीं अवली,
अवली बाकी।
देखो आयु की एक अवली पहले रुकती है क्योंकि मरण के पहले एक अवली रुकती है, छठे के पहले अवली रुकती है ऐसा नहीं कहा। वेदिनी का तो छठे के अंतिम समय में उदीर्णा होगी, अरे उसके तो निश्चय असंख्यात पल्ले के असंख्यात विभाग में अंत कोड़ाकोड़ी प्रमाण पड़े, उसके उदीर्णा होने में कोई रुकावट नहीं थी, उसके बस उस प्रकृति की योग्यता है कि अभी उदीर्णा नहीं होने वाली, उदीर्णा नहीं होने वाली है, ऊपर उसका आकर्षण वगैरह चलेगा उसकी बात। ख्याल में आती है ना बात। हाँ देखो अभी यहां से पढ़ेंगे, एक जीव की अपेक्षा आठ कर्मों की उदीर्णा का अंतरकाल जघन्य से एक आवली, यानी वो आवली कहीं पर भी घटित करो, सातवें में जाने की अपेक्षा बात करो या रेगुलर मरण की अपेक्षा, एक आवली तो रहेगी ही रहेगी अंतरकाल, वो उत्कर्ष से अंतर्मूर्त प्रमाण है। अब जो उत्कर्ष से अंतर्मूर्त है, जो आठ कर्मों की उदीर्णा कब तक हो रही थी, छठे के अंत तक, फिर ऊपर चढ़ गए, श्रेणी चढ़ी पूरी और उतरे, तो अंतर्मूर्त तक तो वो तो आठ की हो रही थी, छह की हुई, बाद में पांच की हुई, जो कुछ है वो तो फिर नीचे आ जाएंगे। यानी पहले रही थी, फिर छह की हो जाएगी, फिर दसवें के बाद उसकी पांच की हो जाएगी, परंतु लौटकर फिर अप्रमत से प्रमत में आ गया, फिर आठ की हुई, यानी वो उत्कृष्ट अंतर एक अंतर्मूर्त पूरा श्रेणी का काल, उपशम श्रेणी का काल, ये जो अंतर्मूर्त बताया ना, ये उपशम श्रेणी का काल, अब सात की उदीर्णा का अंतर, सात की उदीर्णा का अंतर कब हो जाएगा? जब सात में से सात की कब कर रहा था मरण के पहले, अंतर आवली पहले सात की कर रहा था। सात में से आठ कब होगा? जब नया भव शुरू होगा। फिर सात कब करेगा? उस नए भव के आवली में प्रविष्ट हो जाएगा वो। तो जगने के लिए क्या करना, नया जो भव है, यानी यहां अंतिम आवली में सात की कर रहा था, फिर नया भव शुरू हुआ तो आठ की करने लगा, वो छोटे में छोटा शुद्र भव लेना, और शुद्र भव के अंतिम आवली में प्रविष्ट होने पर फिर सात का हो जाएगा। यानी पहले सात का था, फिर सात में हुआ तो अंतर सिद्ध हुआ। तो देखो, सात की उदीर्णा का अंतर जगन्यता आवली से हीन शुद्र भव ग्रहण, समझ में आती है बात ये, और उत्कर्ष से आवली कम 33 सागरोपम प्रमाण है। जो आठ कर्मों का उदीरक ऊपर काल देखा था ना, आवली कम 33 सागर, ये सात का अंतर उतना ही लेना। आगे बढ़े, ये समझ में आ रही बात? हाँ, देखो पहले सात की उदीर्णा का अंतर देखना है। सात की कब कर रहा था? अंतिम आवली में। सात में से आठ में आया तो सात का अंतर चालू हो गया, तो हमें वहां उत्कृष्ट अंतर करना है। तो सात किया ही नहीं, किया नहीं तो क्या करा था? आठ का। कब तक करेगा? 33 सागर तक। पर उसके अंतिम आवली में प्रविष्ट होते ही वो सात का करने लगेगा। यहां मरण के समय तक सात का कर रहा था, वहां की पूरी आयु में से अंतिम आवली में प्रविष्ट होते ही सात का करने लगा। तो उत्कृष्ट अंतर कितना होगा? 33 सागर माइनस एक आवली। यहां ख्याल में है बात? ये सात का अंतर उत्कृष्ट। अब छह की उदीर्णा का अंतर लेना है। छह की उदीर्णा कब कर रहा था? सातवें में प्रविष्ट होते ही छह की करेगा। और छह में से अभी उसके दो पॉसिबिलिटीज है, छह में से ऊपर पांच का हो जावे, या छह में से नीचे आए और आठ का करने लगे। तो दोनों अपेक्षा उसका जघन्य अंतर करेंगे। हो सकता है कि छह में आ गया और मरण होके देव में चला गया, तो उसकी वहां के आठ की शुरू हो जाएगी। परंतु छह का अंतर नहीं, वापस छह में आना चाहिए। छह का कर रहा था, फिर वापस छह में आने के लिए उसके मिनिमम काल कितना लगे, जिसको हम अंतर कहते हैं। तो देखें, छह की उदीर्णा का अंतर जगन्य से अंतर्मूर्त, यानी दसवें तक तो छह का कर रहा था, अंतिम आवली तक, फिर ग्यारहवें में गया और वापस दसवें में आया। यानी जो ग्यारहवें का काल है वो छह का अंतर होगा, यानी दसवें की अंतिम आवली प्लस ग्यारहवा। एक्चुअली उपशम में वो आवली लेना कि नहीं लेना? हाँ, पहली स्थिति में आवली प्रमाण नहीं, पर आवली प्रमाण है तो बराबर उसकी रुक जाएगी उदीर्णा। हाँ, दसवा का आवली प्लस ग्यारह। यानी दसवें की आवली प्लस ग्यारहवा का पूरा काल मिलकर अंतर्मूर्त। ख्याल में आई बात? छह की उदीर्णा का अंतर का पहले छह की कर रहा था, फिर छह में से पांच की करने लगा, वापस छह की करने लगा, उसको छह का अंतर कहेंगे। तो ये हमने देखा। और उत्कर्ष से उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, इसका अर्थ समझते हो? छह की कब कर रहा था? जब जब सातवें में आया तब तब छह की करेगा। तो सातवें में से देखो, ये काल भी उसको मिनिमम नहीं कहा। हम सातवें से छठे में आएगा तो आठ की करेगा, फिर दोबारा सातवें में जाएगा तो छह की करेगा। तो मिनिमम अंतर के लिए वो छठे का काल नहीं लिया, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, उसकी अपेक्षा ग्यारहवीं का काल बहुत छोटा है, इसलिए जघन्य अंतर में वो लिया। उत्कृष्ट अंतर कैसे सोचना? अभी सातवें में से छठे में आए और छठे में से नीचे के गुणस्थानों में चला गया, सातवें में आए नहीं, फिर मिथ्या तो में गए और कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक घूमे, फिर मनुष्य में आए, फिर जब संयम धारण करेंगे पहले से सातवें में जाएंगे तब उनका अंतर समाप्त होगा। तो इसलिए कहते हैं कि उत्कृष्ट अंतर उपार्ध पुद्गल, उप अर्ध यानी कुछ कम यानी नजदीक, अर्ध पुद्गल के नजदीक यानी कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल है। इसी प्रकार पांच कर्मों के उदीरकों का भी अंतर कहना चाहिए। पांच का कर रहा था, पांच का पांच में से क्या होगा वो? पांच कब तक कर रहा था वो? देखो ग्यारहवें में भी पांच का कर रहा था, ग्यारहवें में पांच कर रहा था और फिर दसवें में आने पर छह करेगा, फिर दोबारा पांच कब करेगा अर्लीस्ट? कैसे? हाँ, दोबारा श्रेणी चढ़ने वाला वो अंतर्मूर्त होगा, वो पहले ग्यारहवें के अंतर्मूर्त से बड़ा होगा, परंतु ये दोपहरा उपशम, ये दो उपशम श्रेणी के बीच वाला अंतर्मूर्त है, वो उसका जघन्य अंतर होगा। ये लिखा है ना, पांच कर्मों के उदीरकों का भी अंतर कहना चाहिए। कौन सा? जघन्य अंतर्मूर्त। पर वो अंतर्मूर्त कौन सा है? दो उपशम श्रेणी के बीच वाला, यानी जघन्य अंतर जो है दो बार उपशम श्रेणी के बीच। और फिर उत्कृष्ट अंतर वही उपार्ध पुद्गल परावर्तन। दो के उदीरकों का अंतर नहीं होता, मनीषा बहन आपको बताना है दो का उदीरक कब हुआ? नहीं, बारहवें के अंतिम आवली में और पूरे तेरहवें में दो का उदीरक रहा। दो के उदीरकों का अंतर कब शुरू हुआ? जब चौदहवें में गया तो वो दो का उदीरक नहीं रहा, किसी का भी उदीरक नहीं रहा, तो वापस दो का उदीरक होगा? नहीं होगा, तो उसका अंतर नहीं होगा। ख्याल में आई इसका अर्थ? देखो, दो के उदीरकों का अंतर नहीं होता क्योंकि अंतर को प्राप्त होने पर अंतर शुरू हुआ पण मिटा नहीं, तो उसको अंतर का काल कैसे कहेंगे हम? अंतर नहीं है यानी वो अंतर शुरू हो गया, पण अंतर जब हम गिनते हैं उसकी आदि हुई, अंत हुआ ही नहीं, अभी तो कायम अंतर ही अंतर, अभी उदीरना होने वाले नहीं, अभी कर्म ही नहीं रहने वाले। फिर दो की उदीरणा के प्रादुर्भाव का अभाव है, फिर दो की उदीरणा नहीं होगी क्योंकि तेरहवें के अंत में आ गए, चौदहवें में चले गए और मोक्ष चले जाएंगे। इस प्रकार अंतर समाप्त हुआ। यहां तक समझ में आई बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय बताएंगे। अब यहाँ क्या बात हो रही है? प्रकृति स्थानों की उदीरना, यानी आठ करने, आठ की करने वाले जीव हो गए, सात की करने वाले भी हो गए, इस तरह से बताएंगे। नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय, जो जीव जिस प्रकृति स्थान की उदीरणा करते हैं वे प्रकृत है, यानी उनकी बात कर रहे हैं, यानी कोई जीव आठ की कर रहे हैं, कोई सात की कर रहे हैं, उनकी बात है। तो कहते हैं आठ सात छ और दो प्रकृतिक स्थानों के नियम से सब जीव उदीरक होते हैं, यानी उनकी उदीरणा करने वाले जीव हमेशा होते हैं, ऐसा है। क्योंकि आठ करने वाले तो हमेशा हो गए हो गए, आठ करने वाले तो अनंत हो गए, सात करने वाले भी मरण के पहले वो भी अनंत में हो गए होंगे, हमेशा ही होंगे। छह की करने वाले ने जब जब उम्निराज है तो वो निरंतर गुणस्थान है छठे सातवें, तो उनकी भी छह करने वाले भी हमेशा ही मौजूद होंगे। हाँ, संख्यात हो गए। और दो प्रकृति वाले ने के तेरहवें वाले पांच प्रकृति को ऑप्शनल में रखा है क्योंकि श्रेणी वाले हमेशा नहीं रहेंगे। तो कहते हैं आठ सात छह और दो प्रकृतिक स्थानों के नियम से सब जीव उदीरक होते हैं। कदाचित ये नाना जीव उदीरक होते हैं और पांच का एक जीव उदीरक होता है। देखो एक पहला में पहला भंग कौन सा? यानी सब जीव उदीरक हो रहे हैं। कौन से? ये आठ के सात के छह के और दो के। दूसरा पॉसिबिलिटी कौन सी है? कदाचित ये नाना जीव उदीरक होते हैं, इनमें तो रहेंगे ही रहेंगे, इन एडिशन पांच का एक जीव उदीरक है, यानी एक जीव दसवें में या ग्यारहवें में बारहवें में प्रविष्ट हुआ है। अब तीसरा भंग कौन सा? कदाचित ये नाना जी उदीरक होते हैं, और पांच के भी नाना जी उदीरक होते हैं, क्योंकि वो आठ सात छह और दो के हमेशा ही अनेक जीव ही रहेंगे, और कभी कभी अनेक जीव श्रेणी में भी हो गए, अनेक नहीं संख्या, परंतु वो एक से ज्यादा है उसको अनेक कहेंगे। इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय समाप्त हो, ये इतने ही भंग उसमें हो गए। अब नाना जीवों की अपेक्षा काल, देखो आठ सात छह और दो प्रकृतियों में सदा काल होगा, हमेशा ही उन करने वाले जीव होंगे। अब कहते हैं पांच कर्मों के उदीरकों का काल जघन्य से एक समय। पांच की उदीरना कब शुरू हुई? दसवें के अंतिम आवली में प्रवेश हुआ, और एक समय तक वो पांच का उदीरक किया और फिर मर गया। तो पांच की उदीरना एक समय तक की अनेक जीव ने, अनेक जीवों की बात है ना यहाँ पर। तो पांच कर्मों के उदीरकों का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त प्रमाण है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद कोई पांच करने वाले है। पांच में से कोई दो करके जाएंगे, पांच में से कोई नीचे आएंगे छह का करेंगे, परंतु लगातार यानी अंतर्मूर्ति संख्याति जीव कर सकते हैं, और एक जीव अंतर्मूर्त करेगा तो संख्या जीव भी अंतर्मूर्ति करेंगे। ख्याल में आई बात ये? तो कहते उसका अंतर्मूर्त है। शेष कर्मों के उदीरकों का काल सर्वदा है। शेष कर्मों के ने छह शेष स्थानों के होना चाहिए। शेषाणम, शेषाणम कहा यहां उन्होंने, शेषाणम है आठ के सात के छह के दो के। शेष कर्मों के उदीरकों का नहीं कहना, शेष स्थानों के, कर्मों के बदले प्रकृति स्थानों के उदीरकों का काल सर्वदा है। कर्मों के बदले स्थानों के करो हम, क्योंकि हम स्थानों की चर्चा कर रहे हैं। पांच की बात, पांच कर्मों के लिखा है इसलिए शेष कर्मों के बताए उन्होंने। पंचन्नम उदीरणम, अंतर, पांच कर्मों के अभी अंतर है, यानी वो कर रहे थे वापस नहीं कर रहे फिर दोबारा करेंगे। पांच कर्मों के उदीरकों का अंतर जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से छह मास। अभी हमको ये एक जीव की अपेक्षा नहीं घटित कर रहे हैं, नाना जीवों की अपेक्षा, यानी हमको ऐसा देखना है कोई जीव पांच कर्मों की उदीरना कर रहे हैं, तब होगा उपशम श्रेणी में होगा, क्षपक श्रेणी में भी कहीं पर भी होगा, यानी दसवें के एक आवली पूर्व तक वो छह की कर रहे थे फिर पांच की करने लगे, किसी एक जीव ने किया वो करते करते ऊपर चला गया तो दो की करने लगा, एक समय के लिए कोई उसमें नहीं आया और फिर बाद में कोई आया उसमें, तो अंतर कितना हुआ? एक समय का। और उत्कृष्ट अंतर छह महीने तक तो कोई श्रेणी नहीं चढ़ा, यानी कोई श्रेणी चढ़ के गया और छह महीने तक बाद में किसी ने श्रेणी चढ़ के वहां आया, तो उत्कृष्ट अंतर छह महीना हो जाएगा। नाना जीवन की अपेक्षा कहीं पर भी ले सकते हैं, हमको मिनिमम वो अंतर, अंतर तो क्षपक ही लेना, क्योंकि उपशम श्रेणी की अपेक्षा अगर बात करेंगे तो पृथक वर्ष होगा, परंतु हमें उपशम से मतलब नहीं है, किसी भी जीव ने कोई भी श्रेणी चढ़ी तो अंतर तो समाप्त ही हो गया। इस प्रकार अंतर भी समाप्त हो गया। यहाँ पर भी शेष कर्मों के नहीं, शेष स्थानों की अपेक्षा है, उसको कर्म कहा है, ठीक है, हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इन्हें कर्मों की यहाँ ब्रैकेट में स्थानों के समझ लेना, अपने समझने के लिए ब्रैकेट में डालना स्थानों के, यहाँ पर भी ऐसे ही समझना। अभी अल्पभूतव यानी कौन से स्थान वाले जीव, नंबर ऑफ जीव कम हो गए, कौन से ज्यादा हो गए, उसकी बात यहाँ है। पांच के उदीरक जीव स्तोक है, क्योंकि श्रेणी चढ़ने वाले जो मैक्सिमम है उनकी संख्या कम है। दो के उदीरक संख्यात गुणे हैं, क्योंकि दो के उदीरकों में सेव केवली को लेना, लाखों में हो गए संख्यात गुणे हैं। छह के उदीरक उससे संख्यात गुणे हैं। छह के उदीरक यानी अभी सातवें गुण स्थान से लेना, ये रेगुलर सातवें में भी ले, वो करोड़ों में है। केवली भगवान लाखों में है तो ये करोड़ों में है, तो वो संख्यात गुणे होंगे। सात के उदीरक अनंत गुणे हैं। सात के कब, वो जो मरण के पहले कावली में प्रविष्ट हो गए हैं वो सारे अनंत जीव है। आठ के उदीरक संख्यात गुणे हैं क्योंकि वो भी अनंत है, तो उससे संख्यात गुणे, क्योंकि एक आवली में संचित सात के उदीरकों से संख्यात आवलियों में संचित हुए आठ के उदीरक संख्यात गुणे पाए जाते। क्या कहना चाहते हैं, अनंतों में संख्या जो देख ली है हमने, तो सात के उदीरक हमने अनंत देखे, अब उससे आठ के उदीरक हमको देखना है। तो अनंत जीवों में अगर हम एवरेज आयु देखेंगे तो संख्यात आवली ही कहेंगे, वो आवली में प्रविष्ट थे, ये संख्यात आवली वाले जीव है, तो उसे संख्यात गुणे होंगे। इस प्रकार अल्पभूतव समाप्त हुआ। अब भुजाकार के विषय में अर्थपथ। अब देखो इसमें भुजाकार लगा, प्रकृति एक एक प्रकृति की उदीरणा में भुजाकार नहीं था, क्योंकि एक ही प्रकृति की उदीरणा की हम चर्चा कर रहे थे। अब यहाँ भुजाकार अल्पतर और जो अवस्थित की बात क्या है, जैसे कोई पांच का कर रहा था और वापस नीचे आया छह की करने लगा तो उसको भुजाकार कहेंगे। सातवें गुणस्थान में छह की कर रहा था और नीचे आया तो आठ की करने लगा, उसको भुजाकार कहेंगे। बढ़ते हुए यानी नंबर ऑफ प्रकृतियां बढ़कर उदीरणा हो रही उसको भुजाकार कहते, और घटकर हुआ उसको अल्पतर कहेंगे। उसका हम पहले पढ़ेंगे यहाँ। भुजाकार के विषय में अर्थपद यानी उसका जो नियम क्या है, उसका अर्थ क्या है वो बताएंगे। इस समय जितनी प्रकृतियों की उदीरणा करता है उससे अनंतर पिछले समय में, अनंतर पिछला समय ने प्रीवियस पूर्व समय में, उनसे थोड़ी प्रकृतियों की उदीरणा करता है, यह भुजाकार उदीरणा है। यानी वर्तमान में वो अधिक करके हो रहा है, यानी पूर्व समय में हाँ वो छह की कर रहा था सातवें गुणस्थान वाला, वर्तमान में वो छठे गुणस्थान में आया है तो बढ़कर उसने उदीरणा की, तो उसको क्या कहेंगे, भुजाकार। बढ़ी ना प्रकृतियों की संख्या, बढ़ गई वो भुजाकार है। इस समय जितनी प्रकृतियों की उदीरणा करता है उनसे अनंतर बीते हुए समय में, यही नहीं पूर्व समय में बहुतर प्रकृतियों की उदीरणा करता है, यह अल्पतर उदीरणा है। देखो सातवें में से छठे में आने वाला बहुतर यानी भुजाकार उदीरणा करता है, और छठे से सातवें में जाने वाला अल्पतर यानी आठ से वो छह की करने लगा, वो अल्पतर हुआ। दोनों ही समयों में उतनी मात्र प्रकृतियों की ही उदीरणा करने वाले के अवस्थित उदीरणा होती है। ये लगातार आयु पर्यंत तो मरण के पूर्व समय तक तो लगातार आठ आठ की उदीरणा कर रहा था, उसको क्या कहेंगे, अवस्थित। अभी अंतिम आवली में प्रविष्ट हुआ, आवली तक लगातार वो सात सात की करने है, उसकी भी अवस्थित है पर आवली तक अवस्थित है। समझ में आई ना उसका काल किस तरह से घटित करता। अब अनुदीर्णा से उदीर्णा करने वाले के अवक्तव्य उदीर्णा होती है, यानी पहले नहीं कर रहा था अभी कर रहा है, उसको क्या कहेंगे, अवक्तव्य। जहां जहां भुजाकार का ये जो प्रकरण आता है नाम, उसका भुजाकार कहेंगे या भुजाकार, परंतु उसमें भुजाकार अल्पतर अवस्थित और अवक्तव्य, ये चार भंग होने वाले हैं। ख्याल में आई बात, देखो अनुदीर्णा से उदीर्णा करने वाले की, तो अनुदीर्णा से उदीर्णा किसकी होगी, हाँ जो उदीर्णा नहीं हो रही थी और अब उदीर्णा होने लगेगी, हाँ उसको यहां ले लेना। परंतु देखो देखो आयु की नहीं हो रही थी, होते एक एक प्रकृति की बात नहीं है, हमको प्रकृति की बात नहीं है, स्थानों की बात है। अनुदीरक तो चौदहवें में है, तो अवक्त होगा नहीं,
तो यहाँ पे स्थानों की बात कर रही
है, स्थानों की बात है, स्थानों की है,
तो आठ का अवक्तव्य,
आठ का थोड़ी अवक्तव्य होता है, हाँ पेज नंबर 51। देखो अभी पहले हाँ अनुदीर्णा कौन है, अनुदीर्ण कौन है, चौदहवें वाले, फिर उदीर्णा होगी नहीं, वो तो अवक्तव्य किसको कहना उसकी बात है, कहना किसको कहीं पर भी जो देखो देखो ब्रह्मा यहाँ बात क्या हो रही है, प्रकृति के स्थानों की उदीर्णा, स्थानों के यानी जब आठ कर्मों की उदीर्णा कर रहा था वो प्रकृति आठ प्रकृतिक स्थान उदीर्णा का स्थान, सात प्रकृतिक उदीर्णा का स्थान, तो जो आठ में से सात करेगा या आठ में से छह करेगा उसको कहेंगे अल्पतर, घटकर उसके प्रकृति स्थानों की संख्या घटी, और कोई छह करने वाला आठ करने लगे तो उसको हम कहेंगे भुजाकार, या पांच में से छह करने लगेगा तो उसको कहेंगे भुजाकार, अब जो आठ वाला आठ ही करता रहेगा तो उसको कहेंगे अवस्थित। तो तीन बातें हुई, एक भुजाकार यानी बढ़कर, अल्पतर, अवस्थित, और जो नहीं कर रहा था वो करेगा तो उसको कहेंगे अवक्तव्य। हाँ अभी ये वो स्थिति बंध वगैरह में वो लागू होता है, या ज्ञानावरण की जो प्रकृति बंध रुकता है वो बंध में वगैरह अन्य अन्य जगह वो लागू होता है, यहाँ वो लागू नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं होगा, पर जहां जहां भुजाकार का प्रकरण है उसमें ये चार बातें बताई जाती है, और ये भुजाकार का प्रकरण अनेक बातों में आता है। अभी यहां देखते देखो स्वामित्व 51 नंबर में स्वामित्व देखेंगे, समझ में ना, भुजाकार किसको कहना, जितनी प्रकृतियां पहले बंधी उससे अधिक बंधेगी तो उसको भुजाकार कहेंगे, जितनी बनती उससे कम नंबर ऑफ प्रकृतियां बंधेगी उसको अल्पतर कहेंगे, जितनी बनती एक समय में दूसरे समय में उतनी बंधेगी तो अवस्थित कहेंगे, और जो नहीं बंध रही थी बिल्कुल, अभी यहां बंधी की बात नहीं है, उदीरक की बात है, उदीरना हो ही नहीं रही थी और होने लगेगी तो अवक्तव्य कहेंगे। ये शब्द बंध के बारे में, उदय के बारे में, उदीर्णा के भी सब जगह भुजाकार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य शब्द वैसे के वैसे आने वाले। अभी उसका स्वामित्व बता रहे, पे जो उदीर्णा नहीं होने वाला जीव उदीर्णा करने लगा, कोई नहीं होगा तो पर अवक्तव्य नाम का भंग तो बताना चाहिए ना उनको, उनका ऐसा कौन सा जी होगा, जैसे दो की उदीर्णा वाला कौन था, तेरहवे के अंत तक, और चौदहवे में क्या होगा, अनुदीरक, तो अनुदीरक से फिर उदीरक होने वाला है, नहीं होगा तो उसका कोई स्वामी नहीं होगा, ख्याल में ही बात, ये दो में से भुजगार होने वाला भी कोई नहीं होगा, समझ में। हाँ देखो स्वामित्व फिर देखते, भुजाकार उदीरक, अल्पतर उदीरक और अवस्थित उदीरक कौन होता है, भुजाकार ने कम बांध रहा था अधिक बांध रहेगा तो कहते सात में से आठ का बांधने वाला होगा ना, मरण के पहले सात का उदीरक था, बांधने वाला ने उदीरक था और फिर आठ का होने लगा, नए भाव में गया, तो अल्पतर मिथ्या दृष्टि अथवा समय दृष्टि जी उनका उदीरक होता है। यहाँ केवल मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि इतना ही लिया, कौन से, भुजाकार के, अल्पतर के भी और अवस्थित के भी, क्योंकि हमने देखा था वो छठे से सातवें में जाने वाला भी अल्पतर करेगा, सातवें में से छठे में आने वाला भी भुजाकार करेगा, अवस्थित तो अपनी अपनी जितना काल है अपनी अपनी उदीर्णा का तब तक अवस्थित होगा वो। अवक्तव्य उदीरक नहीं है, क्या लिखा है अवक्त यानी अनुदीरक है, कौन, चौदहवें वाले, पर उसमें से फिर उदीरक हो जाते तो हम अवक्तव्य कहते। मनीषा बेन कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, हाँ हाँ ख्याल में आई बात। हाँ देखो ये अवक्तव्य वगैरह जो है ना वो बंध की अपेक्षा समझाना आसान है, ये मैं उदाहरण के तौर पर बंध का नाम ले रही। ज्ञानावरण का बंध कब तक है, दसवें तक, वो ग्यारहवें में जाएगा क्या होगा, अनुदीरक ने भी उदीर्ण की बात मत करो, हम अवक्तव्य बंध में समझा रहे आप, ग्यारहवे में साता सॉरी ज्ञानावरण का बंध नहीं है, वो वापस दसवें में आते ही ज्ञानावरण का बंध शुरू होगा, उस बंध को हम अवक्तव्य कहेंगे। अवक्तव्य का अर्थ समझ में, वो एक प्रकृति की अपेक्षा अवक्तव्य कहा था, परंतु जिसका बंध ही नहीं होता है, अभी सातावेदनी का भी बंध तेरहवें तक है। पूरे सभी प्रकृतियों का अबंधक कब होता है? चौदहवें में। फिर वो वापस तेरहवें में आता है बंधक। हाँ, बंध से बंध नहीं होगा, ये सभी इन जनरल सभी प्रकृतियों की अपेक्षा बात है। तो अनुदीरक कब कहेंगे? चौदहवें वाले को। अभी उसमें से उदीरक नहीं होने वाला। तो कहते हैं कि उदीरणा में अवक्तव्य नाम का ये भुजाकार पद में वो भंग यहां नहीं बनता है। ख्याल में आई बात? अभी आगे। अब काल, काल का अर्थ क्या होना है? यानी भुजाकार का अर्थ क्या है? थोड़ा था फिर अधिक हुआ, तो लगातार काल कितना होगा उसका? भुजाकार से फिर दोबारा भुजाकार, फिर दोबारा भुजाकार, फिर दोबारा भुजाकार, ऐसा कब होगा? एक ही समय में होगा। देखो, भुजाकार और अल्पतर उदीरकों का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से दो समय प्रमाण है। भुजाकार का कैसे लेना हम? देखो, पांच का कर रहा था, पांच में से छह का करेगा कब? दसवें में आते ही, और दसवें में एक समय में मरण होगा तो वहां आठ का करने लगेगा। तो पांच से छह हो गया और फिर आठ हो गया, फिर आठ का तो आठ ही चलेगा। तो लगातार उसने दो समय तक भुजाकार किया। ख्याल में आई बात? फिर से देखो, भुजाकार और अल्पतर उदीरकों का काल जघन्य से एक समय है। अब अल्पतर में ऐसा ही लेना है,
नहीं,
दो बार अल्पतर होना चाहिए। यानी दो बार अल्पतर कैसे करेंगे हम? छह से पांच नहीं,
नहीं, आठ में से सात का लगा, समय में भर गया, नहीं, एक, दो समय का
कम करना है, अल्पतर करना है।
आठ से सात किया,
हाँ, देखो ऐसा करना है, आठ से सात क्यों किया? क्योंकि अभी मरण को आवली बाकी है, यानी आवली में प्रविष्ट हुआ और फिर सातवें में प्रवेश हो चला गया, तो वेदिनी की भी उदीरणा रुक गई।
अच्छा,
मरण तो आवली के बाद होने, एक समय आवली के बाद होने वाला है। देखो देखो, छठे में एक समय बाकी था तब उसको आवली में प्रविष्ट हुआ, मरणांत के आवली में प्रविष्ट हुआ, तो छठे में रहते हुए उसने से आठ से सात किया, और सातवें में जाने पर वेदिनी की भी रुक गई तो छह हो गया। दो समय तक लगातार उसने आठ से सात और सात से छह किया। देखो हम जरा इसको देखते हैं, यहां लिखा है ना, यह शायद बताया होगा, वही इस प्रकार से हम वहीं से पढ़ेंगे। देखो, भुजाकार और अल्पतर उदीरकों का काल जघन्य से एक समय, उत्कर्ष से दो समय प्रमाण है, वही इस प्रकार से। उपशांत कषाय जीव के सूक्ष्म सांप्रायिक होकर, ये भुजाकार की बात बता रहे, क्योंकि उपशांत कषाय में पांच की कर रहा था। सूक्ष्म सांप्रायिक होकर छह प्रकृतियों की उदीरणा करने पर भुजाकार उदीरणा का एक समय प्राप्त होता है। यानी पांच में से छह में आया और छह करता रहा, एक समय के लिए उसका वो बढ़ गया। पश्चात द्वितीय समय में मृत्यु को प्राप्त होकर देवों में उत्पन्न हुए उक्त जीव के प्रथम समय में आठ कर्मों की उदीरणा करने पर भुजाकार उदीरणा का द्वितीय समय प्राप्त होता है। यानी पांच से छह किए, दसवें में आते ही एक समय छह करके मर गया, देव में आठ का करने लगा। इस प्रकार भुजाकार उदीरणा का उत्कृष्ट काल दो समय है। ये समझ में आई बात मनीषा बेन? थोड़ा आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा। प्रमत्त संयत गुणस्थान के, प्रमत्त ने छठे गुणस्थान वाला आठ का कर रहा था, अंतिम समय में आयु के उदयावली में प्रविष्ट होने पर, यानी उसकी आयु अभी एक आवली बाकी है, तब वो अभी छठे में ही था, तो एक समय आठ से वो सातवें में आ गया। सात कर्मों की उदीरणा करने वाले के अल्पतर उदीरणा का एक समय काल होता है। पश्चात द्वितीय समय में, क्योंकि लगातार एक एक समय में उसको अल्पतर अल्पतर करेगा तो ही उसका काल गिनेंगे, द्वितीय समय में अप्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त होने पर वेदनीय बिना छह की उदीर्णा करने वाले के अल्पतर उदीर्णा का द्वितीय समय पाया जाता है, यानी आठ से सात और सात से छह ये किस तरह से घटित करना है वो हमको सोच कर देखना है, है ना। इस प्रकार अल्पतर उदीर्णा के भी उत्कर्ष से दो ही समय है, यानी लगातार अगर अल्पतर होता गया तो भी दो समय, अभी तीसरे समय में वो छह से पांच नहीं होने वाला। अवस्थित उदीर्णा का काल ये तो हम सोच सकते हैं, लगातार आठ का, लगातार सात का, तो अवस्थित उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से एक समय अधिक आवली से हीन तैतीस सागरूपम प्रमाण है। कौन से प्रकृति में क्या ऐसा नहीं है, तो हमें वो भुजागार के प्रकरण में क्या लेना है, बस अवस्थित इतना ही है, कहाँ होता है, कौन से स्थान की होता है, उससे कुछ मतलब नहीं है। अवस्थित उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय, यानी जो अभी हम सातवें गुणस्थान में देखो या कहीं पर भी जो देखो श्रेणी में, स्पेशली मरण की अपेक्षा वो उसके एक समय तक किया उतना का उतना और मरण हुआ, जैसे छह का करने लगा और छह का करते करते मरण हो गया, दो समय तक छह किया और मरण हुआ तो वहां आठ का किया, तो अवस्थित का लगातार एक समय, या छह से पांच का करने लगा, पांच का एक बार किया, पांच का दूसरी बार किया, अवस्थित एक समय तक हुआ और फिर मर गया, ये हो। उत्कर्ष से एक समय अधिक आवली से हीन तैतीस सागरूपम प्रमाण है। अवस्थित उदीर्णा की बात बस एक समय अधिक आवली से हीन, यानी आवली प्लस एक समय कम कर देना है, क्योंकि उतना का उतना, उतना का उतना चाहिए, क्योंकि पहले समय को हम गिन नहीं सकते। तैतीस सागर की आयु लेकर जन्मा, पहले समय में आठ का किया, दूसरे समय में उसको कहेंगे अवस्थित एक समय के लिए किया, आठ का आठ दो समय तक किया, यानी आठ अवस्थित एक समय के लिए हुआ, उतना का उतना, पहला जितना है उसको गिनना नहीं है, पहले आठ का एक समय के लिए किया था उसको तो बस किया उदीर्णा की, दूसरे समय में फिर उदीर्णा की तो एक समय के लिए अवस्थित, तीसरे के लिए भी आठ की तो दो समय के लिए अवस्थित, इसलिए वो एक समय तो पहले कम कर देना। फिर जब वहां मरण के पहले आवली में प्रविष्ट हो गया वो आवली और ये पहला एक समय, तैतीस सागर में से इतना कम करो, इतना उसका लगातार का अवस्थित का उत्कृष्ट काल होगा। देखो अवस्थित उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से एक समय अधिक आवली से ही तैतीस सागरूपम प्रमाण है। अब ये कौन से प्रकृति वाला है इससे मतलब नहीं है, बस वो अवस्थित है वो इतना ही देखना है। यहाँ एक समय और एक आवली से देवों में उत्पन्न होने का प्रथम समय और मरणावली ली गई है ना, बात दोनों ओर से ले लिए। इस प्रकार काल समाप्त हुआ। ये नरक में होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये तो फॉर एग्जाम्पल तैतीस सागर की आयु वाला देव लिया, बस इतना। भुजाकार उदीर्णा का अंतर, देखो अंतर कहना है, भुजाकार यानी क्या, पहले सात मरण के समय में सात का कर रहा था, फिर सात से आठ किया, फिर सात का करेगा तो उसके लिए भुजाकार का अंतर, सॉरी सात का अंतर करना नहीं, फिर भुजाकार करना है, आठ में से तो भुजाकार नहीं हो सकता, तो हमको उल्टा लेना है, पर आठ में से और ऊपर भुजाकार नहीं कर सकता, तो छह से सात किया और सात से आठ किया, ये भुजाकार का अंतर हो सकता है। देखो भुजाकार उदीर्णा का अंतर जघन्य से एक व दो समय है, क्योंकि पांच कर्मों का उदीरक उपशांत कषाय जीव नीचे उतरकर सूक्ष्म सांप्रायिक होकर छह कर्मों की उदीरक हुआ, द्वितीय समय में भुजाकार उदीर्णा अवस्थित उदीर्णा से अंतर को प्राप्त हुई। यानी पांच से छ किया है भुजाकार हुआ, पर छ का छ रहा वो अवस्थित हुआ, क्योंकि उसको भुजाकार लगातार नहीं करना है, उसमें अंतर नहीं होगा, हमें अंतर करना है, तो एक समय के लिए उसने अवस्थित किया। जब पांच से छ हुआ तो भुजाकार हुआ, फिर और एक समय के लिए छ किया तो अवस्थित हुआ, अब वो छह से आठ में करना है मरकर। तो देखो द्वितीय समय में भुजाकार उदीर्णा अवस्थित उदीर्णा से अंतर को प्राप्त हुई, यानी छह का छह रहा, छह से लेकर छह तक। तृतीय समय में मृत्यु को प्राप्त होकर देवों में उत्पन्न हो आठ कर्मों की उदीर्णा करता हुआ भुजाकार उदीर्णा को प्राप्त हुआ। यानी भुजाकार का अंतर कितना हो उसके लिए एक समय वाला, इस प्रकार भुजाकार उदीर्णा का एक समय अंतर देखा जाता है। अब उत्कर्ष से एक समय कम 33 सागरोपम प्रमाण अंतर होता है, वह इस प्रकार 33 सागरोपम प्रमाण आयु वालों में उत्पन्न होने के प्रथम समय में भुजाकार उदीर्णा को करके, अच्छा एक समय कम 33 सागरोपम तक अवस्थित या अल्पतर उदीर्णा से अंतर को प्राप्त हो। देखो आठ में से वो भुजाकार नहीं करने वाला, परंतु आठ से सात होकर फिर भुजाकार कर सकता है। पहले क्या, मरण के पहले वो सात का कर रहा था, सात में से आठ हुआ तो भुजाकार हुआ, आठ में से नौ तो नहीं होगा पर भुजाकार नहीं होगा, पर अल्पतर तो हो सकता है ना, पहले अवस्थित रहा फिर अल्पतर हुआ और बाद में दूसरे भव में गए तो भुजाकार हुआ। यानी उसके भुजाकार कब किया, सात से आठ हुआ, तो आठ हुआ तो नया भव चालू हो गया, वो पहला समय जो भुजाकार हुआ तो सात से आठ हुआ, अब आठ के बाद आठ 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 रहा अवस्थित, फिर अल्पतर के आवली तक, यानी अल्पतर होकर आवली तक रहा और फिर दूसरे भव में गया, तब उसने भुजाकार किया। तो भुजाकार का उत्कृष्ट अंतर लेना है, वो कितना होता है, एक समय कम 33 सागरोपम। ये समझ में आई बात, वही इस प्रकार से देखो यहां बता रहे 33 सागरोपम प्रमाण आयु वालों में उत्पन्न होने के प्रथम समय में भुजाकार उदीर्णा को करके, भुजाकार किया नहीं क्या किया, सात से आठ किया उसने, भुजाकार हुई ना वो सात से आठ, एक समय कम 33 सागरोपम तक अवस्थित या अल्पतर, वो दोनों मिलकर अवस्थित या अल्पतर, यानी आवली पूर्ण तक तो पूर्व तक तो अवस्थित रहा, अंतिम आवली में एक समय अल्पतर करके आवली तक उसमें फिर अवस्थित रहा, अल्पतर उदीर्णा को अंतर को प्राप्त हो। मनुष्यों में उत्पन्न होने के प्रथम समय में भुजाकार उदीर्णा को करने पर, यानी मनुष्यों में उत्पन्न हुआ है 33 सागरोपम वाला, इसलिए देव लिया, अब वो नारकी को लेकर तिरंचों में भी उत्पन्न करा सकते, उसकी बात नहीं है, वो आठ का हो गया। एक समय कम 33 सागरोपम प्रमाण भुजाकार उदीर्णा का उत्कृष्ट अंतर होता है, ये समझ में आई बात, पहले भुजाकार किया सात से आठ, फिर लगातार अवस्थित रहा, फिर अल्पतर किया, भुजाकार नहीं किया अल्पतर किया, और फिर दूसरे भव में गया तब भुजाकार किया, इसलिए एक समय कम 33 सागर हो जाएगा काल, उत्कृष्ट काल, ये सॉरी उत्कृष्ट अंतर। इसी प्रकार अल्पतर उदीर्णा के विषय में भी कहना चाहिए, अल्पतर कैसा कहेंगे हम, आठ से सात हुआ ये आवली हुआ और फिर भुजाकार किया, अल्पतर नहीं किया, फिर आठ में रहा, फिर अंतिम आवली में सात में आया, यानी यहाँ सात में आया और फिर वहां जाके सात में आया, तो यहाँ की आवली वहां की आवली कैंसिल होगी और बीच में एक समय कम 33 सागर हो जाएगा। क्योंकि आवली प्रमाण काल के बाद देवों में उत्पन्न होगा, इस प्रकार पूर्व में ही अल्पतर उदीर्णा करके अंतर को प्राप्त हो, यानी आठ से सात हुआ देव में उत्पन्न होने के पहले, तब अंतर शुरू हुआ। देवों में उत्पन्न होकर आवली से कम 33 सागरोपमों को बिताकर अल्पतर उदीर्ण किया। देव में जब आयु में अंतिम आवली में प्रवेश किया तब उसने अल्पतर किया, उक्त अंतर पाया जाता है। अथवा दूसरी पद्धति से अल्पतर उदीर्णा का उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर से अधिक 33 सागरोपम है। देखो क्या कहे, अल्पतर ने अधिक कर रहा था वो कम करना है। हाँ, तो कैसे कहेंगे?
छठे से सातवें में गया अल्पतर हुआ।
हाँ देखो, छठे से सात यहाँ लिखा है क्या? नहीं लिखा है। अल्पतर का क्या करना है? अल्पतर उदीर्णा का उत्कृष्ट अंतर। अल्पतर होने के बाद वो अवस्थित रहा, उसने अल्पतर किया ही नहीं, बीच में भुजाकार करेगा तो पहले में अल्पतर का अंतर कब से ले लेंगे हम? देखो, हाँ श्रेणी चल 8 से 6 हो गया, तो क्या होगा? अल्पतर का अंतर कब शुरू हुआ? आठ से। हाँ फिर दसवें में मरण हो गया, यानी उसमें देखो देखो, यानी अल्पतर किया यानी सातवा लिया, सात के बाद आठवा लिया, नौवा लिया, दसवा लिया। हाँ दसवें में मरण हुआ
और
भुजाकार किया
और अंत में जाके आवली बाकी रहेगी तभी उसका
अल्पतर किया उसने। अब देखो अंतर्मूर से अधिक 33 सागरोपम है,
ऐसे ही हुआ।
हाँ क्योंकि सातवें का काल बड़ा है ना, नहीं तो उल्टा ऐसा ले सकते, परंतु अल्पतर का अंतर घटित करना है ना।
हाँ।
तो अल्पतर उसने किया,
कम
किया।
तो
ज्यादा कम, हाँ, वैसे ही करना है।
हाँ,
अल्पतर का अंतर करना है, यानी उसने अल्पतर किया ही नहीं बहुत लंबे काल तक, ऐसा जीव लेना है।
बहुत लंबे काल तक
पहले वो 8 का कर रहा था, 8 के बाद वो 6 का किया, ये अल्पतर हुआ। उसके बाद आप अवस्थित रहो या बढ़ा कर करो, अल्प हुआ ही नहीं, तो अल्प हुआ ही नहीं तो ये जब 6 में आया, सॉरी 6 में आया नहीं, छठे गुणस्थान से सातवें में आया, ये छठा गुणस्थान है, ये सातवें में आया अल्पतर हुआ। अब सातवें में आया, फिर सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, और दसवें में उसका मरण हुआ। दसवें में 6 का कर रहा था ना, पर वो 5 का करेगा तो दोबारा अल्पतर हो जाएगा, वो नहीं लेना। यानी 6 का किया कहाँ तक? तो दसवें तक। फिर वहां से देव में ये भुजाकार हुआ, हमको अंतर में भुजाकार कर सकता है, फिर लगातार वो 8 का 8 रहा, अंतिम आवली तक उसने 8 से 7 किया, 8 से 7 किया तो अल्पतर हुआ। ये अल्पतर था और ये अल्पतर था, यानी उत्कृष्ट अंतर ये छठे से दसवें तक, ये अंतर्मूर, और फिर इसने 33 सागर में एक आवली कम। इसलिए उन्होंने बताया ना, आवली से कम अंतर्मूर्त अधिक आवली से कम, अंतर्मूर्त अधिक 33 सागरों का, ये आवली कम वो अंतर्मूर्त में गिन दो। देव में गए, लास्ट में फिर 8 से 6 किया, ये अल्पतर हुआ। पहले 8 से 6 किया था, लास्ट में 8 से 7 किया उसने, ये अंतर्मूर्त बढ़ाया, सातवें से दसवें तक का अंतर्मूर्त बढ़ाकर। अभी अवस्थित का अंतर करना है,
तो सब
तो अवस्थित का अंतर कब कहें? बीच में अगर अल्पतर या भुजाकार होगा तो अवस्थित का अंतर होगा। तो भुजाकार लगातार एक या दो ही समय हो सकता है, ज्यादा नहीं, और उसके अब लगातार अल्पतर भी दो ही समय तक हो सकता है, अधिक नहीं, यही बता रहे। अवस्थित उदीर्णा का अंतर जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से दो समय। जो हमने भुजाकार का काल देखा वो इसका अंतर होगा। अब कहते इस प्रकार भुजाकार उदीर्णा का अंतर समाप्त हुआ। भुजाकार ने वो सभी उसमें लेना, भुजाकार अवस्थित और अल्पतर मिलकर सबको भुजाकार कहने की पद्धति है, यानी ये प्रकरण अंतर वाला प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ। अब कहते हैं नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय। वेदक प्रकृत है, भुजाकार अल्पतर और अवस्थित उदीरक नियम से है, अवक्तव्य उदीरक नहीं है, इस प्रकार ओग समाप्त हुआ। ये जो अलग अलग जो पद है ना, चार कौन से है? भुजाकार हो सकता है, अल्पतर हो सकता है, अवस्थित हो सकता है, पर अवक्तव्य इसमें नहीं हो सकता। तो भुजाकार उदीरक होते हैं, अल्पतर होते हैं, अवस्थित होते हैं, नियम से है, परंतु अवक्त नहीं है, इस प्रकार ओग समाप्त हुआ। शेष गति आदिकों के विषय में जानकर कथन करना चाहिए, इस प्रकार नाना जीवन की अपेक्षा भंग विचय समाप्त हुआ। देखो जरा जानकर कथन करेंगे। अश्विन भाई आप बताना, नरक गति में इनमें से कौन कौन से होंगे भंग?
नरक गति में अल्पतर
होगा। अल्पतर होगा, नहीं होगा। हाँ, और दूसरा कौन सा?
अवस्थित पद होगा।
अरे अवस्थित तो पूरा तीति सागर तक। देखो देखो, लगातार आठ चल रहा है, उसमें से सात में आएगा। अब उसमें छह का पांच का दो का कोई है ही नहीं स्थान उसके, तो अवस्थित है और अल्पतर है। अल्पतर भी वो मरण के पहले होगा, अल्पतर नरक में भी ऐसा ही, देव में भी ऐसा ही, और तीरियंचो में ऐसा ही होगा, और मनुष्य में क्योंकि छठे से सातवें वाली
प्रवृत्ति,
हाँ, तो उसमें सभी पॉसिबल है। हाल में आई बात, इस प्रकार इसलिए आदिकों के विषय में ये बता दिया। अभी सभी मार्गणों में आदिकों की हम समझ सकते, यानी जहाँ ऊपर के गुणस्थान नहीं है वहाँ बाकी के भुजकार नहीं हो गए। भुजकार तो वैसे हो गए, भुजकार देखो देखो भुजकार कब हो गए कि सात से आठ हुआ तो भुजकार होगा, तो तीरियंच में भुजकार होगा कि नहीं होगा? कब होगा? हाँ, दो लगातार वो तीरियंचों के हो सकते हैं, तो उसमें होगी वो भुजाकार। देव और नारकियों में एक ही भव है, तो उसमें भुजाकार नहीं होगा। ख्याल में आई बात? देखो तीरियंचों में लगातार रह सकता है ना जीव, तो एवरी भव में वो सात से दूसरे भव में गया तो आठ करेगा, सात से आठ करेगा तो भुजाकार होता रहेगा उसका। यानी पर देव से देव होगा क्या? देव से देव होगा क्या? पर यहाँ गति मार्गणा लगा रहे ना, हमने ओग में तो दे दिया ना, ओग में कहा ना पाड़ी उसकी, ओग में विदाउट कंसीडरिंग कौन सी गति में कहाँ जा रहे उससे कोई मतलब नहीं, वो ओग में लिया था। अब यहाँ गति में अगर लेना है तो देव और नरक गति में अल्पतर होगा, भुजाकार नहीं होगा, अवस्थित और अल्पतर होगा। और मनुष्य तीरेंचों में अल्पतर भी होगी, अवस्थित होगी, भुजाकार होगी, क्योंकि मनुष्य से मनुष्य तीरेंच से तीरेंच भी संभव है, और मनुष्यों में ऐसे भी, मनुष्यों में ऐसे अवक्तव्य तो किसी में ही नहीं है। हाँ, वही नहीं, अभी वो तो ठीक है, वो तो हाँ कौन से है नहीं है, वो तो अवस्थित अल्पतर और भुजाकार। अभी हम सभी हाँ क्या बेटा, अल्पतर कब होगा? 8 से 7 होगा। वो कब होगा? मरण के पहले। तो उनके देव के देव रहते हुए 7 से 8 नहीं होगा फिर, क्योंकि देव से अगर आ जाएगा तो तिरंश में जाएगा या मनुष्य में जाएगा, उसकी गति बदल जाएगी, मार्गणा बदल जाएगी। देव के रहते हुए क्या रह सकता है, लगातार 8 का या फिर लास्ट में 7 का, उसमें तो अन्य कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए उसमें अवस्थित भी होगा और अल्पतर भी होगा। जैसे तिरियंचों में क्या है, तिरियंचों में रहते हुए उसके अवस्थित तो चलता ही है, अल्पतर भी होगा मरण के पूर्व, और तिरियंश जो तिरियंच में ही जाएगा तो 7 से फिर 8 भी करेगा। आगे बढ़ते 53। तो गति आदि कों के विषय में अभी सब सब अलग अलग मार्गणा एक एक विस्तार से लगा लेना, क्या इंद्रिय मार्गणा गति मार्गणा योगों में ये वो सब अगर हम सोच सकते हैं, उसमें बहुत विस्तार से सोच सकते हैं, है ना। अभी नहीं सोचेंगे, खाली खाली मार्गणाओं के नाम बता दो अश्विन भाई।
गति ज्ञान
दर्शन भव्य सम्यक संज्ञा और आहार, ये तो मूल मार्गणाओं को ही भूल जाएंगे और लगाएंगे कैसे उसमें है? अभी 53 पेज पर आते हैं। भागा भाग यानी कितने भाग प्रमाण है, पूरे जो जीव है उनके कितने भाग प्रमाण होते हैं, भुजका करने वाले कितने हैं, अल्पतर करने वाले कितने भाग प्रमाण है, इस तरह से परिमाण यानी उनका प्रमाण, क्षेत्र क्षेत्र यानी लोक के कितने भाग में है, स्पर्शन यानी अतीत काल को भी ले लेना, काल ये नाना जीवों की अपेक्षा बात है ना, ये सब हम नाना जीवों की अपेक्षा बात कर रहे हैं। नाना जीवों की अपेक्षा बात उन्होंने क्या क्या, भुजाकार भी है, अल्पतर वाले भी है, अवस्थित भी है, और नियम से भुजाकार और अल्पतर करने वाले नाना जीव तो अनंत हो गए, क्योंकि मरण के पहले और बाद में वो तो करने वाले हो गए ना इतने, अवस्थित भी अनंत है क्योंकि अवस्थित करने वाले तो हमेशा रहेगी रहेगी। अब उनका क्षेत्र क्षेत्र नहीं वर्तमान का, भुजाकार अल्पतर अवस्थित का तो पूरा लोक होगा, स्पर्शन भी लगातार काल की बात है तो हाँ हमेशा होगा, क्योंकि वो मरने वाले भी अनंत हो गए, हाँ इस तरह से अंतर भी देखा, अंतर नहीं होगा। अब भाव को जान कर ले जाना चाहिए, हाँ ना, अल्प भौत्व यानी कौन से करने वाले कितने हैं उसकी बात है। भुजाकार उदीरक स्तोक है, अल्पतर उदीरक विशेष अधिक है। तो विशेष कितना है, वह संख्यात मनुष्य जीवों के बराबर है, क्योंकि अल्पतर करने वाले कौन है, देखो देखो एक तो भुजाकार और अल्पतर समझो ना, कि आयु की अपेक्षा तो उसको हम इक्वल रखेंगे भी, परंतु संख्यात मनुष्य जो है अल्पतर करने वाले ने क्या है, वो तो 8 से 6 कर दिए, 8 से 6 किए, 6 से 5 किए, तो थोड़े जीव उसमें ऐड हो जाएंगे। अल्पतर उदीरकों से अवस्थित उदीरक असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि अवस्थित का काल असंख्यात गुणा है। इसलिए भुजकार 1 या 2 समय तक होते हैं, अल्पतर 1 या 2 समय तक होते हैं, और अवस्थित तो लगातार असंख्यात वर्षों तक भी चल सकते हैं, है ना। तो गुणकार क्या है, गुणकार असंख्यात समय है, उसको उन्होंने नाम नहीं दिया कितने सागर के है या कुछ है, असंख्यात समय। इसी प्रकार मनुष्य गति में भी अल्प बहुत्व कहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य गति में ही वो भुजगान से अल्पतर वो विशेष अधिक है, वो उदीरक वो बात हो गई। शेष गतियों में भुजाकार और अल्पतर उदीरक समान होकर स्तोक है। अवस्थित उदीरक असंख्यात गुणे हैं, इस प्रकार अल्प भूतव समाप्त हुआ। समझ में आती बात ये? अब पद निक्षेप हम कल पढ़ेंगे क्योंकि हाँ आवाज नहीं आ रही। हाँ जरा आवाज फिर भी गई। हाँ
प्रवचन नहीं होंगे।
हाँ मंगलवार को सुबह शाम नहीं होंगे प्रवचन।
और बुधवार को आप फोन करके कंफर्म करना कि हम आए हैं।
हाँ, सुबह की बात कंफर्म करना बुधवार को। अभी थोड़ा
आपका प्रवचन सुबह नहीं आ रहा।
हाँ क्योंकि वो तो फेसबुक पर सुनने वालों के लिए ये इंस्ट्रक्शन है,
लेकिन
मंगलवार को नहीं होगा। हाँ बुधवार को देख लेना।
आज दोपहर का होगा।
आज होगा। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सना देत हो नो अश्विन में